أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا سیریز کی آج کے قسط میں انشاءاللہ کوفے کے حالات ہم بیان کر رہے تھے, اور پچھلے قسط میں عرض کیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ جو جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے ساتھ مل کر ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا تھا دارالعمارہ کا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ تھے کہ جو شمشیر بکف ہو کر انہوں نے دارالعمارہ کا گھیراؤ کر لیا, اور اس گھیراؤ کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں تو کافی ایک مشکل اور ایک اس کے لیے ابن زیاد کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی تھی, کیونکہ ایک بڑی تعداد تھی کوفیوں کی کہ جو تلواروں کے ساتھ اسلحے کے ساتھ آ چکے تھے اور دارالعمارہ کے باہر جمع تھے اور دارالعمارہ کا گھیراؤ کر چکے تھے. اب یہاں پر جو تاریخ ہے یہ تاریخ کا ایک تلخ یہ واقعہ ہے جس کا آغاز تو شیریں ہے, جیسے کہ ہزاروں لوگوں کا آ جانا اور ان کا آ کر اس کا دارالعمارہ کا گھیراؤ کر لینا یہ تو ایک شیریں بات ہے, لیکن اس کا جو انجام تھا وہ کافی تلخ ہوا. وہ یہ کہ ابن زیاد نے اپنی عیاری اور مکاری کے ساتھ اس نے جو کوفہ کے جو ایسے افراد تھے سرکردہ جو بنی امیہ کے مخلص تھے جن کی خدمات اور جن کی وفاداریاں بنو امیہ کے ساتھ خاص تھی, ان لوگوں کو جمع کیا اور کوفہ کے خزانے کا منہ کھول دیا, ان کو سونا دیا اور ان کو یہ کام سونپا کہ جتنے لوگ اس وقت جناب مسلم کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں ان کو ان کے اطراف سے دور کریں, اور اس کام کے لیے جتنا سونا استعمال کرنا ہے اور یہ دولت جو ہے وہ لٹائی جائے. اب یہاں پر کوفہ میں ایک تو یہ کام کیا کہ خریدا جائے لوگوں کو, دوسرا پھر ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ شام کا لشکر جو ہے وہ ابن زیاد کی کمک کے لیے اور کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے شام سے لشکر آ رہا ہے جس کی تعداد بہت بڑی ہے, اور یعنی لاکھ کے قریب کا لشکر آ رہا ہے, اور یزید کی طرف سے اس کو پورے اختیارات ہیں, اور وہ کوفہ میں جن لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے قیام کیا ہے ان کو وہ لشکر ان لوگوں کو تہس نہس کرے گا, ان لوگوں کو نابود کرے گا, ان لوگوں کو قتل و غارت گری کی جائے گی, ان کا مال و متع لوٹ لیا جائے گا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی. یہ پروپیگنڈا اور یہ خبر بھی کوفہ میں پھیلائی گئی. اب دو طرف سے سمجھے دو طرح سے یہ حملہ کیا گیا, ایک تو لالچ یہ دی گئی سونے کی, اور دوسرا پھر خوف ڈرایا گیا. اب خوف اور لالچ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان متقی پرہیزگار نہ ہو, انسان اگر صاحب ایمان نہ ہو, انسان اگر اس حوالے سے تربیت یافتہ نہ ہو, انسان کا اعتقاد اگر کمزور ہو, تو پھر ایسے انسان خوف میں یا خوف کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں, راہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر لالچ کی وجہ سے راہ حق کو ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ پروپیگنڈا کوفہ میں کر دیا گیا. اب جب یہ پروپیگنڈا پھیلا کہ کیوں یا شام سے لشکر آ رہے اور یہ قیام کرنے والوں کو इस तरह से उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। अब यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनको, वो घरों से निकली हैं बहुत सारी ख़वातीन कि जिनके कि जिसका किसी का शोहर, किसी का बेटा, किसी का भाई जो जनाब मुस्लिम के साथ मिल के इस वक्त दारुल अमारा के उसको मुहासरा किए हुए थे। तो ये लोग, ये ख़वातीन आईं और आकर ये अपने जो जिसका बेटा था वो बेटे को लेके जा रही हैं, कोई अपने शोहर को लेके जा रही हैं, कोई बच्चे अपने बाप को लेके जा रहे हैं, बहन भाई को लेके जा रही है। इस तरह वो इस लश्कर को तोड़ने लगे। फिर दूसरा जो था लालच वाला, जिसमें हद तक कि इस तरह की बात भी थी कि आप अपनी शमशीर दे दें, अपनी शमशीर गवर्नमेंट को दे दें, इब्ने ज़ियाद को दे दें और आप शमशीर के बदले सोना हासिल करें। तो ये भी एक मौसर हुआ ये जो साजिश की गई। और यूँ ये जो इज्तिमा था, ये जो हज़रत मुस्लिम के साथ लश्कर था, ये दारुल अमारा के बाहर से ये छटने लगा, ये आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जाने लगे। और ये फिर एक शाम तक, असर के वक़्त तक ये बिल्कुल कम रह गए, थोड़े रह गए, और ये तादाद इतनी कम हो गई कि अब दारुल अमारा के बाहर ठहरना ये मुनासिब भी नहीं था कि इतनी कम तादाद के साथ दारुल अमारा का मुहासरा भी नहीं कर सकते थे तो बाहर ठहर भी नहीं सकते थे। यूँ फिर हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील उन चंद लोगों के साथ जो रह गए थे ये मस्जिद कूफा आ गए। मस्जिद कूफा में आने के बाद मगरिब और इशा की नमाज़ यहीं पर पड़ी है। मगरिब और इशा की नमाज के बाद अब दोबारा जब बाहर निकले हैं, अब अंधेरा था और इस अंधेरे में निकले और कुछ लोग जो साथ थे वो भी एक एक करके वो छूटने लगे, भागने लगे हज़रत मुस्लिम को छोड़कर। यूँ इशा की नमाज के बाद कूफा में जब बाहर निकल के गलियों में चल रहे थे तो एक मरहला ऐसा आता है कि हज़रत मुस्लिम के साथ कोई भी नहीं होता और वो सारा लश्कर, सुबह के वक़्त हज़ारों का लश्कर जो साथ था, इशा की नमाज के बाद तक वो सारे लोग मुंतशिर हो गए और हज़रत मुस्लिम अब अकेले थे कूफा में। और ज़ाहिर है कि कूफा एक बड़ा शहर बन चुका था और इस बड़े शहर में जनाब मुस्लिम तन्हा थे, चलते फिरते रहे गलियों में यहाँ तक कि थक कर एक घर के सामने जाकर बैठ गए। ये घर एक मोमिना खातून का था जिनका नाम तौआ था। तो हज़रत मुस्लिम को जब बाहर बैठा देखा तो उस खातून ने सवाल किया कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो जनाब मुस्लिम ने पानी मांगा, मुझे पानी पिला दें, प्यास लगी है। तो इस तौआ खातून ने जनाब मुस्लिम को पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद उसका तकाज़ा ये था कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन जिस वक़्त तौआ को पता चला कि ये हज़रत मुस्लिम हैं, जनाब इमाम हुसैन के सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील हैं, तो तौआ ने इमाम जनाब मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी और अपने घर में ठहराया, एक कमरे में, एक हुजरे में ठहराया, खिदमत की, खाना खिलाया, पानी खिलाया, नमाज के लिए मसल्ला बिछाया। हज़रत मुस्लिम ये रात तौआ के घर में रहे। इब्न ज़ियाद जब इस मरहले से गुज़र चुके और उसने देखा कि वो कामयाब हो चुका है और उसके लिए वो मरहला जब गुज़र गया तब ज़ाहिर है कि वो ताकतवर हो चुका था और उसके हौसले भी बढ़ चुके थे, तो उसने ये ज़िम्मे लगाया मोहम्मद इब्न अशअस के कि मुस्लिम जनाब मुस्लिम को कूफा में तलाश करके गिरफ़्तार करके इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया जाए। तो हज़रत मुस्लिम की तलाश जारी थी। तो ये जो तौआ खातून हैं, इन खातून का बेटा जो है वो शराबी था, शराब के नशे का आदी था और उस नशे की लत में पड़ा हुआ था। तो जब उसे पता चला कि हज़रत मुस्लिम उसके घर में हैं तो उसने, क्योंकि ज़ाहिर है कि इब्न ज़ियाद की तरफ से ऐलान हुआ था इनाम का भी कि जो जनाब मुस्लिम का पता बताएगा उसके लिए इनाम का ऐलान हुआ था, तो ये शख्स जो शराबी था ये इसने जाकर मोहम्मद इब्न अशअस को जाकर ख़बर दी और जनाब मुस्लिम के अपने घर में होने की इतला उनको दे दी। इस इतला के बाद मोहम्मद इब्न अशअस सिपाहियों के साथ तौआ के घर का मुहासरा कर लिया और हज़रत मुस्लिम को तस्लीम होने और गिरफ़्तारी देने के लिए कहा। जनाब मुस्लिम ने मुज़ाहमत की, जंग की और बड़ी दिलेराना जंग की, हालाँकि अकेले थे लेकिन एक दिलेराना जंग, एक शुजाना जंग, जिस तरह एक बहादुर लड़ता है, बेहतरीन जंग की। और जंग करते करते तस्लीम नहीं हुए थे। तो मोहम्मद इब्न अशरस को भी अंदाज़ा था कि जनाब मुस्लिम कोई आम जवान नहीं है, बल्कि उसे खबर थी कि ये बनी हाशिम है और बनी हाशिम में से भी हज़रत मुस्लिम हज़रत अब्बास की तरह शुजात में बहादुरी में मशहूर थे। और इस शोहरत की वजह से मोहम्मद इब्न अशरस को अंदाज़ा था कि वो लड़ाई में जगह इसको जनाब मुस्लिम को तस्लीम नहीं करवा सकेंगे, लिहाजा उसने यहाँ पर धोखा दिया। उसने ये ऐलान किया हज़रत मुस्लिम के लिए कि अगर आप तलवार रख दें तो हम आपको अमान देंगे। तो अब हज़रत मुस्लिम चूँकि ज़ख्मी हो चुके थे, काफ़ी ज़ख्म भी आ चुके थे, तो आपने जब अमान की बात सुनी तो इस नीयत से कि इब्ने ज़ियाद से बात की जाएगी तो आपने तलवार रख दी। गिरफ़्तार किया गया जनाब मुस्लिम को और जनाब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के सामने लाकर दारुल अमारा में पेश कर दिया। हज़रत मुस्लिम तशरीफ़ लाए, सलाम नहीं किया इब्ने ज़ियाद लईन को। तो यहाँ पर किसी ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो, तो हज़रत मुस्लिम का वो तारीख़ी जुमला है, कहते हैं अमीर ही हुसैन व निमल अमीर। मौला मुस्लिम कहते हैं मेरा अमीर, मेरे अमीर मौला हुसैन है, और हुसैन कितने अच्छे अमीर हैं, हुसैन से बढ़कर कौन अच्छा अमीर हो सकता है। यहाँ पर इब्न ज़ियाद और मुस्लिम जनाब मुस्लिम के आपस का मुकालमा भी है, जिसमें इब्न ज़ियाद अपनी बात करता है। हज़रत मुस्लिम ने इंतहाई शुजाना और दिलेराना अंदाज में इब्न ज़ियाद से बात की, और ख़ुलासा ये कि इस गुफ्तगू और इस बात जो गुफ्तगुशनीद के बाद इब्न ज़ियाद ने कहा कि मुस्लिम मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जनाब मुस्लिम ने कहा कि मैं लड़ते हुए शहीद होना पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारे आए हुए इसने जो सिपाही थे इन्होंने मुझे अमान दी है, उस अमान की वजह से मैंने तलवार रखी है, वेला तो मैं लड़कर मरना ही पसंद करता। खैर जनाब मुस्लिम ने कहा मेरी कुछ वसीयतें हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वसीयतें करूँ और यहाँ किसी को वसीयत करूँ। तो उमर साद क्योंकि बचपन का दोस्त था, जानने वाला था, तो जनाब मुस्लिम ने उमर साद को बुलाकर वसीयत की। तीन वसीयतें हज़रत मुस्लिम की थी। पहली वसीयत यह कि मैंने कुछ कर्ज़ लिया है यहाँ कूफा में, तो ये मेरे ज़ेरा बेच के उस कर्ज़ को अदा कर दें। दूसरी वसीयत ये की कि मैं मेरे जो जनाजे को जिस तरह दफन किया जाता है मुसलमान को, मेरे जनाजे को तदफीन कर देना। और तीसरी वसीयत ये की कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने के लिए ख़त लिखा था कि कूफा के लोग आपका साथ दे रहे हैं तो आप कूफा तशरीफ़ लाएं, तो मेरी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखो कि मौला कूफा ना आए, कूफियों ने बेवफाई कर दी है और अब ये डर और लालच की वजह से कूफी छोड़कर जनाब मुस्लिम को इब्न ज़ियाद के लालच और डर की वजह से जनाब मुस्लिम को छोड़ चुके हैं, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम ये मेरी तरफ़ से दें कि कूफा ना आएँ। ये इसमें जनाब मुस्लिम ने उमर साद की वसीयतें कर दी। उमर साद ने इसमें से ये वसीयत पूरी कर दी, जो दो वसीयतें पूरी कर दी, एक तो जो कर्ज़ अदा करना था वो कर दिया था और मौला हुसैन को जो ख़त भिजवाना था वो भी भिजवा दिया था, लेकिन जो तदफीन वाला था वो उसने पूरा नहीं किया और हज़रत मुस्लिम के जनाजे को कूफा के दरवाज़े पर लटका दिया गया कि मज़लूम शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को दारुल अमारा की छत पर 9 ज़िलहज्जा को इब्न ज़ियाद ने दारुल अमारा की छत पर जनाब मुस्लिम को शहीद करवाया और बाद शहादत सर जुदा करने के बाद आपके बदन मुतहर को दारुल अमारा की उस ऊंची छत से ज़मीन पर गिरा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।